श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 23 श्लोक संख्या 4 दिनांक 5 जून 2015 स्पीकर हिज ग्रेस वनमाली प्रभु।
संस्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम् वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुत पद कमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथान्वितां तां सजीवम् सादवैतं सावदूतं परिजना सहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्वाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
भक्त वत्सल भक्तवांचा कल्पतरु शरणागत वत्सल परब्रह्म दया के निधि दया के सागर दया के मूर्ति कृपा के सिंधु सारे मंगल के मूर्ति सर्व मंगलमय सारे जगत के एकमात्र स्वामी सारे ब्रह्मांड एवं वैकुंठ के स्वामी अखिल रसामृत मूर्ति रसराज रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के परमानुकंपा एवं महिति कृपा से आज हम आप उनके छत्र छाया के नीचे उनके चरण कमलों में आश्रय एवं सेवा प्राप्त कर रहे हैं और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है सत्संग का हमें प्राप्त हो रहा है इस भागवत सत्र के माध्यम से। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी श्री श्री गौर निताई जी उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नगमस्तक होकर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हैं। तदंतर वह भगवान के असीम कृपा बड़े सुलभता से हमें प्राप्त हो रही है महान वैष्णव आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से। इसलिए हम उनके भी चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महा अनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आज के इस सत्र के ओर हम अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को हम प्रारंभ करते हैं। परम मंगल यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। यह वैष्णव संतों का परम धन है। परम विरक्त चक्र चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज जी भगवान भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं, उन लीलाओं को, उन रसमय कथाओं को हमें यहाँ सुना रहे हैं, परीक्षित महाराज जी को सुना रहे हैं। कैसे भगवान भक्त वत्सल हैं और भगवान के भक्त कैसे हैं, उनके हृदय में कितना प्रेम है, उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए जो सारे जगत के स्वामी हैं, जो अपने आप में तृप्त हैं, आत्मा राम है, वह भी उन भक्तों के प्रेम से वसीभूत हो जाते हैं। ये भागवत श्रीमद् भागवत का वर्णन करते हुए एक महान वैष्णव आचार्य कहते हैं, ये भागवत जो है, श्रीमद् भागवत जो है, ये भगवान की कथा नहीं है। ये श्रीमद् भागवत जो है भगवान की कथा नहीं है, ये भक्तों की कथा है, भक्तों की प्रेम की कथा है, भक्तों का जो भक्ति है उसकी कथा है, भगवान का इस कथा नहीं है। अगर ये भगवान का कथा होता तो ये श्रीमद् भगवतम होता। ये भागवत जैसे वसुदेव का पुत्र वासुदेव, इसी प्रकार से भगवान का भक्त भागवत होता है। तो ये श्रीमद् भागवत जो है भक्तों की कथा है, श्रीमद् भागवत कथा जो है भक्तों की कथा है। तो हमने देखा कैसे भगवान के भक्त जो गोपियां हैं वे तीव्रता से भगवान से प्रेम कर रहे थे, तो उनके उस प्रेम को देखकर भगवान उन्हें आशीर्वाद दिए। अब और गोपियों का भी वर्णन आता है, जो मथुरा के नज़दीक वृंदावन में और मथुरा के बीच में जो गोपियां हैं, उन गोपियों में एक गोपी जो है उनका तीव्र प्रेम जागृत हुआ था, उनको आशीर्वाद देने के लिए आज भगवान ये लीला कर रहे हैं। तो ये भागवत के बारे में कहते हैं वो भक्त कि ये भगवान की कथा नहीं है। जैसे एक नीति आती है, कहा जाता है, हाँ वो नीति में कहा जाता है त्रिनम स्पर्शत, गांव को क्या कहते हैं संस्कृत में, शहर और गांव कहते हैं ना, गांव को क्या कहते हैं, ग्राम गच्छत त्रिनम स्पर्शत। ग्राम का अर्थ होता है गांव। ग्राम में अगर जाएं तो अपने आप उनका लक्ष्य है गांव जाना, गांव में चलते चलते जाएंगे अपने आप त्रिन यानी कि घास को स्पर्श कर लेंगे। इसी प्रकार से भक्तों का गुणगान अगर करते रहेंगे अपने आप भगवान आ जाएंगे। तो इस वो नीति है, ये भागवत जो है श्रीमद् भागवत है अर्थात भक्तों की कथा है, पर भक्तों का अगर कथा कहे तो भगवान आ ही जाएंगे, भगवान का वर्णन हो ही जाएगा। चाहे ध्रुव महाराज का कहो या प्रहलाद महाराज का कहो या कोई और भक्तों का भी लो, अजामिल का भी ले लो, भगवान आ ही जाएंगे उसमें। भक्तों का गुणगान करेंगे तो भगवान आ ही जाएंगे। इसीलिए ये भागवत में अब उन भक्तों का वर्णन आएगा जो भगवान से अति प्रेम कर रहे थे। यहाँ पे उस दिन का वर्णन कर रहे हैं जिस दिन भगवान सुबह सुबह बहुत जल्दी निकले, क्योंकि आज उस गोपी का, उन गोपियों का मुझे उन्हें उनका प्रेम का उनके सेवा का, उनका भक्ति का मुझे फल देना है, उन्हें आशीर्वाद देना है। तो उसे स्मरण करते हुए एक दिन की बात है और उसका वर्णन करते हुए यहाँ पे बताते हैं कि अत गोप्ये परिवृत्तो भगवान देवकी सुत वृंदावन गतो दूरम चार्यंगा सह अग्रजा। अत उस दिन बहुत सारे वे ग्वाल बालों के साथ बहुत समय के बाद, यानी कि ये चिरहरण का जो लीला हुआ था ये ठंडियों के मौसम में, हेमंत ऋतु में और मार्चिस मास में, नवंबर में हुआ। और ये जो घटना है चार पांच महीने के बाद की, अतः उस समय कुछ समय के बाद ग्वाल बालों के साथ गिरे हुए भगवान जो है वृंदावन से बहुत दूर जाते हैं। उन्हें उन गोपियों का स्मरण हो रहा है, बोलते चलिए चलिए चलिए। और वे जब चल के जा रहे हैं तो वर्णन आता है कि सारे ग्वाल बाल नाचते गाते रहे और बीच बीच में जो भी पकवान बनाए थे वो खाने लगे। और खाते खाते गए बहुत दूर गए। तो वहाँ जाने के बाद, दूर तो जा रहे थे सुबह सुबह, पर कहते हैं कि धूप भी बहुत आ गया। निदा गार कता पे तिक में छाया भी स्वाभी रामत आतप त्रायतान विक्षे ध्रुमना व्रजो कस। उस समय धूप इतना था कि उसके ताप जो है वो उसका अनुभव भगवान कृष्ण कर रहे थे, पर देखा कि हमारे ऊपर कोई उस सूर्य का ताप का प्रभाव नहीं हो रहा है। तो क्यों? तो देखा कि सारे वृक्ष मानो कि उनके ऊपर छाया दे रहे हैं और सूर्य का ताप को एकदम से कम कर दिया। तब कृष्ण जो है सारे ग्वाल बालों का से कहते हैं, हे श्लोक कृष्ण, हे अंशो, हे श्रीदाम, हे सुबल, अर्जुन, विशाल वृषभ, ओसिजविन, देवप्रस्थ, वरुतप, पश्यतान, महाबागान, परार्थे एकांत जीवितान, वातवर्षा तप हिमान सहंतो वार्यन्ति नः। हे श्लोक कृष्ण, हे अंश, हे श्रीदाम, हे सुबल तथा अर्जुन, हे वृषभ, हे ओजस्वी, देवप्रस्थ तथा वरतप, जरा इन भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो जिनके जीवन ही अन्यों के लाभ हेतु समर्पित है। वे हवा वर्षा धूप तथा पाला को सहते हुए ही इन तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं। अब वे भाग भाग के जा रहे हैं, सब दौड़े दौड़े जा रहे हैं और बता रहे हैं ये वृक्ष हमारी सेवा कैसे कर रहे हैं। जब कृष्ण बलराम जाते हैं तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण को 10 दिशाओं से घेर लेते हैं। कौन कौन घेरते हैं? श्लोक कृष्ण, अंश, श्रीदाम, इनका नाम बताते हैं। ये लोग सब 10 दिशाओं से घेरते हैं। फिर भद्रसेन करके हैं, बीच में कृष्ण होते हैं, बाकी श्लोक कृष्ण, अंश, श्रीदाम, सुबल, अर्जुन ये सब घेर के रखते हैं और भद्रसेन पीछे रहते हैं। वो यकीन करते हैं कि कृष्ण को इन्होंने घेर के रखा है। जब कृष्ण और बलराम जाते हैं, वो दृश्य का वर्णन हम सुने हैं, फिर से सुनते हैं, क्योंकि कितना मधुर है भगवान के ये लीलाएं। वेणु गीत में उसका थोड़ा सा वर्णन आता है जो हम सुने थे, फिर सुनेंगे। यह बहुत ही सुंदर भगवान का लीला का दर्शन करते हैं और कहते हैं वो गोपियाँ कि अक्षवंत अश्वंताम फलमिदं न परम विद्मा सक्ये पशु निव विशेष तरो यस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोर अनुवेनुजुष्टं यार्वानिपीतं अनुरक्त कटाक्षमोक्षम। भगवान कृष्ण जा रहे हैं और अपने सखियों किसके साथ जा रहे हैं, कहते हैं कि आंखों का जो सेवा है देखने का कार्य है देखने का वो फलीभूत तब होता है, अक्षवंताम फलम इदम तत्परम विद्मः, अगर जब हम भगवान कृष्ण को देखते हैं। कैसे? वो अपने पशुओं के साथ चल रहे हैं, ग्वाल अपने गायों के साथ चल रहे हैं और गायों के पीछे पीछे चल रहे हैं, किसके साथ घेरे हुए हैं, अपने उम्र के वयस्य उनके उम्र के ग्वालों के साथ, और उनमें भी वो दृश्य को देख रहे हैं, पूरे गाय जा रहे हैं फिर ग्वाले जा रहे हैं, उन ग्वालों में कृष्ण बीच में हैं और कृष्ण का सुंदर मुख का दर्शन करते हैं गोपियां। वक्त्रम व्रजे ससुतयोर, वक्त्रम भगवान के सुंदर मुख का दर्शन करते हैं और उस मुख में भी अनुवेनु उसके मुख में वेणु का दर्शन करते हैं, और ये सब दर्शन करते हुए कृष्ण और उनके ग्वाल बाल भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं बलराम जी इत्यादि, तो कहते हैं यार्वानिपीतम, वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे और भगवान कृष्ण अपने तिरछी नजर से कटाक्ष से इधर उधर देख रहे हैं और सबको सबके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, सबको अपने तिरछी नजर से देख रहे हैं इधर उधर सब जगह। और कृष्ण कैसे लग रहे हैं विशेष रूप में जब वो वन में जाते हैं, चूत प्रवाल बर स्तब्ध कोप्त लब्ज माला अनुप्रीत परिदन विचित्र वेशो मध्ये विरेजत तरुल पशुपाल गोष्ठ्यम रंगे यता नटवरो कवच गायमानो। भगवान कृष्ण दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं और इसी दौड़ते दौड़ते भगवान कृष्ण के श्रृंगार को बदल रहे हैं। कैसे? कहते हैं कि चूत आम के पत्ते भगवान के सर पे लगाते प्रवाल उनकी, और चूत प्रवाल कपोलों से युक्त और मोरपंख भी लगते हैं, बरह स्तब्ध फूलों के गुच्छे भगवान के सिर पे लगाते हैं उनके पगड़ी में लगाते हैं, उत्पल और कमल के पुष्प भी लगा देते हैं, अब्ज अता तथा और बहुत सारे फूल जैसे कुमुदिनी या वो सब लगाते हैं और उनके माला भी पहनाते हैं उनको, उन मालाओं से जो है उनको स्पर्श करते हैं और भगवान का रूप जो है बहुत ही सुंदर लगता है। विचित्र वेशो, ऐसा विचित्र वेश धारण वाले कृष्ण बांसुरी बजाते बजाते दौड़ रहे हैं, और कैसे दौड़ रहे हैं, मध्य विरेजत वो बीच में है और कौन कौन उनके घेर के रखे हैं, स्टोक कृष्णा ये इत्यादि सब, विरेजत दो जन है कृष्ण और बलराम, मध्य विरेजत अलम पशुपाल गोष्ठ्यम, इस प्रकार से इस गोष्ठी में दो जन बीच में खड़े हैं और वो कैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे रंगमंच में दो कलाकार रहते हैं वैसे लग रहे हैं। रंगे यता नटबरो कवच गायमानो, दौड़ भी रहे हैं पर भगवान जब दौड़ते हैं अपने सखाओं के साथ ऐसा सुंदर दौड़ है, नाचते गाते हंसते हुए, हम जब दौड़ लगाते हैं तो सांस बाहर आ जाती है, कांपने लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत परिश्रम हो गया है, पसीना आ जाता है, पर भगवान ये का वर्णन आता है वो दौड़ रहे हैं पर मुस्कुराते हुए दौड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान के लिए, भगवान युद्ध भूमि में भी है तो तो भगवान के चेहरे में सुंदर मुस्कान देखा जाता है। कुरुक्षेत्र में सभी लोग गंभीर, पर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही दौड़ते हुए भी भगवान बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं और गा भी रहे हैं। देखिए, हम दौड़ेंगे, अगर आप में से सभी ने दौड़े, हम भी दौड़े हैं बचपन में, तो दौड़ते दौड़ते गा सकते हैं, हालत खराब हो जाती है। पर भगवान गा रहे हैं और नाच भी रहे हैं, तो सोच सकते हैं भगवान कितने एक्सपर्ट डांसर होंगे कि दौड़ते हुए भी नाच रहे हैं, कितने एक्सपर्ट सिंगर होंगे कि दौड़ते हुए भी गा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते कोई गा सकता है, कोई एक्सपर्ट होगा तो ही गाएगा। तो भगवान ऐसे कहते रंगे, और ऐसा लग रहा है दौड़ नहीं रहे, ऐसे लग रहा है कि रंगमंच में दो हीरो नाच रहा है, कृष्ण और बलराम। रंगे यथा नटवरो कवच गायमानो, सब दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, कहाँ दौड़े जा रहे हैं, बहुत दूर निकल गए वृंदावन से, बहुत दूर निकल गए। और धूप का समय था, पसीना से तर तर हो गए सारे ग्वाल बाल, और वे एक जगह पर बैठ गए हैं। जैसे ही बैठे सारे ग्वाल बाल वहाँ पे, थक गए थे और कमजोर हो गए थे, तब वो कृष्ण के पास गए और कहा, श्री गोपावचु राम राम महाबावो कृष्ण दुष्ट निर्बहन एषा वै बाधते शुत नष्ट नष्ट च शांतिं कर्तुम अर्हतम। ये ग्वाल बालों ने कहा, आप कहते हो ये वृक्ष से सीखना चाहिए कैसे हमें को परोपकार का कार्य करना चाहिए, सर्वोच्च निचावर करना चाहिए। हाँ, उपकार का अर्थ होता है रोटी कपड़ा मकान देना, पर अभी आप परोपकार के बात कर रहे हो कि उससे भी बड़ा, हाँ, रोटी कपड़ा मकान इत्यादि देना, ये सब औरों को देना, ये परोपकार की कार्य माना जाता है। और परोपकार के कार्यों में सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है कि हम उनको भगवान कृष्ण से मिला दें, भक्ति दे दें, ये सबसे बड़ा दान है परोपकार का कार्य। रोटी देना, कपड़ा देना, ये ठीक है, रोटी देंगे 3 घंटे के बाद भूख लगेगी, फिर से रोटी मांगेंगे, कपड़ा देंगे 3 महीने के बाद फिर कपड़ा मांगेंगे, ठीक है, उनको नौकरी दे देंगे तो वो कपड़ा और रोटी खाते रहेगा, पर अगले जन्म में फिर से रोटी कपड़ा मांगेगा। इसलिए आप उनको कृष्ण भक्ति दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस जीवन में भी उनका रोटी कपड़ा का स्टॉक भरा रहेगा, और देह त्यागने के बाद भगवान के धाम में भी उनका स्टॉक भरा रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। आप परोपकार के बात कर रहे हो, ये वृक्ष बड़े परोपकार के कार्य कर रहे हैं, तो कृपा करके आप भी थोड़ा सा परोपकार का कार्य कीजिए, हमें रोटी दीजिए, हमें थोड़ा सा भोजन दीजिए, क्योंकि बहुत भूख हमें सता रही है। राम राम महाभाव कृष्ण दुष्ट निर्भरन, आप हे कृष्ण दुष्टों को आप मारते हैं, तो भूख नाम का जो है उस दुष्ट को आप मार डालो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये भूख जो है ये बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा। क्यों दुश्मन है? जिस व्यक्ति को भूख लग जाता है वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाता है, वो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, वो जानवर बन जाता है। क्रोध में भूख लग जाती है तो वो व्यक्ति बहुत ही क्रोधित हो जाता है, वो अपना स्वभाव स्नेह का भूल जाता है और डांटने फटकारने लग जाता है। निर्जल एकादशी के बाद अगर कोई क्रोधित हो जाता है तो कहते हैं कि उसके सारे जो एकादशी का जो तप का लाभ है वो क्षय हो जाता है। इसलिए जब हम तपस्या करते हैं, खास करके भूखे रहते हैं, तो बहुत क्रोध आता है, क्योंकि कहते हैं कि पेट का जो आग है वो सर पे चढ़ जाता है, पेट का आग जो है सर पे चढ़ जाता है, और हम नहीं रहते, यानी कि मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता है, वो क्रोधित हो जाता है। जो व्यक्ति भूखा रहता है उनसे बहुत तुरंत उनको भोजन देना चाहिए, ये बहुत बड़ा सेवा है। दोपहर के समय प्रभुपाद जी के पिताजी देखते थे कोई भूखा है तो उन्हें देते थे, और भूखा व्यक्ति जब खाता है इतना तृप्त होता है, हृदय से नहीं पेट से आशीर्वाद देता है। वास्तव में उसका अंतरात्मा से आशीर्वाद मिलता है भूखे व्यक्ति को जब हम भोजन देते हैं। भूख जो है इतना सता रही थी, वो कहते थे कि ये दुश्मन है, आपने अभी तक तृणावत अगासुर बकासुर का वध किया, अब ये भूख को मार के दिखाओ तब हम मानेंगे आप बहुत बड़ा हीरो, आप नारायण जैसे हो तो ठीक है अभी मानेंगे हम आपको नारायण जैसे, अगर हमारे भूख को आप मारोगे तब। तब सुखदेव गोस्वामी महाराज उस लीला का दर्शन करते हुए कहते हैं, इति विक्षापितो गोपेर भगवान देव की सुत भक्त्या विप्रा भार्या प्रसीदन इदम अब्रवीत। बहुत सुंदर बात यहाँ सुखदेव गोस्वामी महाराज भगवान के मन में क्या चल रही है वो बता रहे हैं। ग्वाल बालों के द्वारा इस तरह प्रार्थना किए जाने पर देवकी पुत्र भगवान, पिछले बार भी हमने बताया देवकी जो है ये यशोदा का और एक नाम है, यशोदा के दो नाम है, नंद महाराज के पत्नी के दो नाम है, एक यशोदा और दूसरा देवकी। इसीलिए आगे जाकर मथुरा के देवकी और वृंदावन के देवकी यानी कि यशोदा में दोस्ती हुई, तो दो नाम है। तो ये देवकी सूत जो है ये कृष्ण का नाम है, भक्तिया अपने भक्त को विप्रभार्या, कौन है वो भक्त विप्रभार्या, विप्र यानी कि ब्राह्मणों के भार्या यानी कि उनके पत्नियां, प्रसिद्धन प्रसिद्धन यानी कि उन्हें संतुष्ट करने के लिए आशीर्वाद देने के लिए कृपा देने के लिए, इदम यह अब्रवीत। भगवान कुछ कहने वाले हैं पर उनके मन में क्या चल रही है ये सुखदेव गोस्वामी महाराज देख लिए हैं और कहते हैं कि उन गोपियों को पर कृपा बरसाना चाहते हैं भगवान। और अब देखिए और यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कुछ भक्तों का कहना यह है, अनेक सारे ब्राह्मण पत्नियां हैं, उनका स्नेह कृष्ण के प्रति है, यह स्नेह उन्हें उनके हृदय में तब हुई जब गोपियां जो है मथुरा जाते हैं दही इत्यादि लेकर, माखन इत्यादि लेकर, दूध इत्यादि लेकर, तब वे कृष्ण का गान करते हैं, कृष्ण का जन्म हुआ है, कृष्ण का जन्म हुआ है, कृष्ण अब चलने लगे, कृष्ण पुतना का वध कर लिए, नंद के आंगन में आनंद है, पूरे वृंदावन में आनंद है, अब इसका वध हुआ, ग्वाल बालों के साथ दौड़ रहे हैं, ये सब सुनते सुनते उनका आकर्षण बन गया, कब हमारे हमें वो भगवान कृष्ण का दर्शन होगा जो नारायण जैसे ही हैं, वैसे कृष्ण का दर्शन कब होगा कब होगा कब होगा। ऐसे करते करते उन गोपियों में उन ब्राह्मण के पत्नियों में एक पत्नी का एक गोपी का प्रेम, कहते हैं कि वह स्नेह से प्रेम से भाव महाभाव के स्तर पर आ गया, कहते हैं कि प्रेम के दशम स्थिति पर आ गए, बहुत ही प्रेम जागृत हुआ, उस प्रेम की विरह में वो गोपी तरस रही है, मैं वो कृष्ण का कब दर्शन करूंगी कब दर्शन करूंगी, उनको उन गोपियों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए प्रसिद्धन, उन गोपी के ऊपर कृपा बरसाने के लिए भगवान ने कुछ कहा। ये शब्द जो कि इस अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक में आया है, वो यहाँ लिखा नहीं गया, इसका अनुवाद है पर तात्पर्य नहीं, उसमें प्रसिद्धन लिखे हैं यानी कि सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, यानी कि एक गोपी को प्रसन्न करने के लिए भगवान, और वो गोपी ने इतना प्रेम आ गया था उस गोपी को प्रसन्न करने के लिए, क्या कहे तो तीसरे नंबर श्लोक में, प्रायता देवयजनम ब्राह्मणा ब्रह्मा दिनम सत्र अंगिरसम नाम हि आसते स्वर्ग कामयाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम लोग यज्ञशाला में जाओ जहां वैदिक आदेशों में निपुण ब्राह्मण का एक समूह स्वर्ग जाने की इच्छा से इस समय अंगिरस यज्ञ कर रहा है। भगवान ने यह नहीं कहा कि ताल वन में जाओ, इस वन में जाओ, उस वन में जाओ। भगवान उस गोपी को प्रसन्न करने के लिए, उस गोपी के, उस विप्र पत्नी के स्मरण करते हुए कहा कि उस विप्रों के समूहों में जाओ, प्रायत जाओ देव यजनम यज्ञशाला जहाँ पे ब्राह्मण गण, और कहीं नहीं कहा, आप वहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ पे भी जा सकते, नहीं, उसका स्मरण करते हुए उनको कृपा बरसाने के लिए। प्रायत देव यजनम ब्राह्मण ब्रह्मवादिना, बहुत निपुण है, स्वाहा स्वाहा, हाँ वैदिक वैदिक आदेशों का पालन करते हुए स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, उनके पास जाइए। सत्र, सत्र का अर्थ होता है यज्ञ, सत्र आंगिरसम स्वर्ग जाने के लिए इच्छा से वे स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। अब उन ब्राह्मणों के पास जाओ, उन ब्राह्मणों के पास जब आप जाओगे तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखेंगे, तत्र गत्वा ओदनम गोपा, वहां पे जब जाओगे जाकर, हे ग्वाल बालों, चार पांच ग्वाल बालों से कहा आप लोग जाओ, आप लोग जाओ, और बाकी सब पीछे बैठे थे और कहते याचत मांगो, भीख मांगो, और भीख मांगते वक्त आप को वो देखेंगे, बोलेंगे ये लड़के लोग कहाँ से आए, ये वृंदावन के ब्रज के लगते हैं कि ग्वाल बाल हैं, ये ऐसे ही घूमते घूमते नटखट बालक हैं, ऐसे समझेंगे, इसलिए आप मेरे अग्रज आर्यस्य, मेरे भगवत आर्यस्य कीर्तयंतो भगवत आर्यस्य, कहो घोषित करते हुए कहो कि भगवत आर्यस्य, भगवान बलराम जी ने, यानी कि आर्य यानी कि जो श्रेष्ठ हैं, बलराम जी ने, और मम चा, और मैं भी च आबिदाम, हम दोनों का नाम लीजिए, पहले बलराम जी का नाम लीजिए तब बोलेंगे हाँ हाँ ये तो नंद महाराज ने वसुदेव का पुत्र है उस बलराम जी, ठीक है बलराम जी के साथ आए हैं तो ठीक है हम लोग इनको देंगे, फिर बाद में मेरा नाम लेना, क्योंकि अगर पहले कृष्ण मेरा नाम सुन लेंगे तो बोलेंगे ये तो बस ये तो नंद महाराज का पुत्र है, वो भी तो ग्वाला है, अरे हम इनके इनके बात नहीं सुनेंगे, इसलिए बलराम जी का नाम लो, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो ये यहाँ पे पहले तो भगवान बताते हैं कि भीख मांगो, भीख मांगने में कोई आपको शर्म नहीं आना चाहिए। भगवान ने अपने मित्रों से को प्रोत्साहित किया, जाओ जाओ बिना किसी चिंता से दान के लिए अनुरोध करें, और ध्यान में रखना बलराम जी का पहला नाम लेना। अब ये जो सुंदर लीला अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज जी कहने वाले हैं, अब बताएंगे कि भगवान किस प्रकार से गोपियों के, भक्तों के प्रेमी हैं, भक्त वत्सल है भगवान, ना तो ये स्मार्ट ब्राह्मण के वत्सल हैं, भले वो कितना भी निपुण हो अपने इसमें, हाँ भगवान ना तो ये स्मार्ट ब्राह्मण के वत्सल है, ना तो ज्ञानी वत्सल है, ना तो दानी वत्सल है, ना तो कर्मी वत्सल है, ना पापी वत्सल है, भगवान भक्त वत्सल है, ये बताने वाले हैं। भगवान जो है इस प्रकार से इन ग्वाल बालों को बेचते हैं, और ये ग्वाल बाल वहाँ अब जाने वाले हैं, और वहाँ जाके कहेंगे कि इस प्रकार से आदेश पाने के बाद ये सब जाएंगे, और फिर आगे क्या होगा हम सुखदेव गोस्वामी महाराज जी से सुनेंगे कल और आगे आने वाले इन क्लासों में। मुख्य बात यह है, भगवान कृष्ण अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं और जो भक्त भगवान के साथ लीला करते हैं वो बड़े आनंद में रहते हैं, इसका हम श्रवण करते आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें इस जीवन में और कुछ प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करना चाहिए, केवल और केवल कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए और उस भक्ति को तीव्रता से करके हम कृष्ण के लीला में कैसे प्रविष्ट हो जाए उसका विधि ढूंढे और उसमें लगे और औरों को भी इसी विधि में लगाएं, यही जीवन का सफलता माना जाएगा। कृष्ण बलराम बड़े आनंद में है, भूख लगा है, पर भूख लगते हुए भी वो गुस्से में नहीं है, पर एक प्रकार से आनंद में ही है और ब्राह्मणों के पास जा रहे हैं। और हमें इस लीला से ये भी बोध हो रहा है कि भगवान का भक्त बनना यही सबसे बड़ा कार्य है, ये सबसे बड़ा उपाधि है। नारद मुनि भी यह घोषित करते हैं, वो कहते हैं कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्त्वा तत्परतेन निर्मलम ऋषिके न ऋषिकेश भक्तिर उच्यते। सारे उपाधियों को छोड़ दो, राजा बनने का, इंद्र बनने का, ब्रह्मा बनने का, सारे उपाधियों को साइड कर दो। कोई बोलेगा कि अब इलेक्शन आ रहा है मैं नगर सेवक बनूंगा, कोई कहेगा मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, कोई कहेगा मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तो बोलता है ये सब तुच्छ है। कोई कहेगा नहीं ये तो तुच्छ है, पर इंद्र बोला वो पद भी तुच्छ है। सर्व उपाधि बोले ब्रह्मा जी वो उपाधि भी तुच्छ है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्पर ते न निर्मलम, आप निर्मल हो जाओ, अमल हो जाओ, पवित्र हो जाओ और अपने इंद्रियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश का सेवा करो, भक्त बन जाओ, ये सबसे बड़ा उपाधि है, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी?